ओम शांति। हम सब बाबा के अनन्य बच्चों को विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है और उस विश्व परिवर्तन का आधार हमारी आंतरिक धारणाएं हैं। जितना हमारी आंतरिक धारणाएं अच्छे से अच्छी होती जाती हैं, हमारी वृत्तियों में जितना परिवर्तन आता है, उतना हम विश्व परिवर्तन का कार्य सहज रूप से कर सकते हैं। इस बार बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया है, 24 तारीख को जब हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे तो बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे तुम्हें अपनी वृत्तियों से वृत्तियों को चेंज करने की सेवा करनी है। कौन सी हमारी वृत्तियां विश्व की वृत्तियों को चेंज करेंगी? तो आज का विषय जो है कि हमारी जो वैराग्य वृत्ति है, वो वैराग्य वृत्ति खुद में भी परिवर्तन लाती और विश्व की आत्माओं को भी यही वृत्ति परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय इच्छाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। हर एक के अंदर एक भावना है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जैसे हमारी दादी जानकी जी कहती हैं, तीन प्रकार की चाहनाएं हर व्यक्ति के अंदर रहती हैं। एक उनके मुख से निकलता है, ये होना चाहिए। दूसरा कहते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये चीज मुझे चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। तो चाहिए चाहिए कि जो इच्छाएं हैं वर्तमान समय बहुत फास्ट गति से बढ़ रही हैं और उस चाहिए की इच्छा के कारण आज अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि पूरा विश्व ही भ्रष्टाचार की कगार पर है, अति में सब चीजें जा रही हैं। एक हमारा स्लोगन है, आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं, जब छोड़ोगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। कितना भी भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश की जाए, लेकिन जब तक व्यक्ति ने विकारों पर जीत प्राप्त नहीं की है, तब तक इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाप्त करने वालों की धारणाएं कितनी ऊंची चाहिए, जिन पर बाबा ने जवाबदारी दी है, जो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के साथ साथ विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, सारी विश्व के अंदर एक ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, चाहनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी ओर दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। कितना दुख चारों तरफ से फैलता जा रहा है कलयुग के अंदर। आप सभी संसार में रहते समाचार संसार के सुनते होंगे। मधुबन तो संसार समाचार के से पार है, यहाँ पर आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब भी बीच में न्यूज कोई सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी चारों ओर विश्व के अंदर दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। आज की समाचार मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रिटेन के अंदर, विशेष लंदन के अंदर, बहुत बड़ा साइक्लोन तूफान आया है। और तूफान इतनी फास्ट है, हवा इतनी तेज है, पानी समुद्र भी उछला है और साथ साथ हवाएं इतनी तेज हैं, जो बहुत सारे मकान, बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और मकान भी टूटे हैं और बहुत सारी गाड़ियां एकदम जो लेटेस्ट आजकल की डिजाइन है, वो सब गाड़ियां उस झाड़ों के नीचे दब गई हैं, बहुत से लोग मरे भी हैं। ऐसे ही केवल एक स्थान की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार की प्राकृतिक आपदा, चाहे वो तूफान के रूप में, भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, इस दुनिया के अंदर दुखों के पहाड़ गिरा रही है। और जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तब उसे वैराग्य आता है। खा रहा है, मौज कर रहा है, चल रहा है, समझता है हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हमें तो ये सब साधन उपलब्ध हैं, बटन दबाते हैं, ठंडा मौसम गर्म हो जाता है, गर्मी में ठंडी आ जाती है, बटन दबाते हैं, यहाँ से कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे एक देश से दूसरे देश की बातों को सुन सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, किसी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। साइंस ने जैसे इस धरती को, हर एक को बहुत सुख दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कलयुग के अंदर माया का ये पॉम्प है। बाबा हम सबको कहते हैं ये सब मृग तृष्णा के समान है, बहुत क्षणिक सुख है, और इस क्षणिक सुख में कभी बच्चे तुम फंस नहीं जाना। अगर इसके पीछे जाओगे तो बहुत दुख का अनुभव होगा। साधन मिले हैं, इनको यूज करो, प्रयोग करो, साधन नहीं तुम्हारे लिए। परसों बाबा की अव्यक्त मौली में यही था कि साधन जो भी हैं वो सब प्रयोग करने के लिए आपके लिए ही हैं, यूज करो, लेकिन इनको अपना आधार नहीं बनाना, इनके अधीन नहीं होना, परवश नहीं होना, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी साधना को बढ़ाओ। आज ब्रिटेन के समाचार में था कि 14,000 घरों में लाइट नहीं है, सब अंधेरे में है। आप समझ सकते हैं ये लाइट फेल होने से कितना लोगों को परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। लिफ्ट बंद हो जाती है, मोटरें पानी की बंद हो जाती हैं, ठंडी है, बहुत ठंडी पड़ रही है बरसात के साथ साथ, तो कूलिंग या गर्मी नहीं ला सकते हैं घर में, वो ठंडी के कारण परेशान है। तो साइंस के साधनों ने सुख भी दिए हैं, लेकिन अचानक कुछ होता है तो बहुत दुख का अनुभव होता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहा है कि बच्चे ये सब बहुत क्षणिक सुख हैं, अपनी तपस्या को बढ़ाओ। सिर्फ हमारा वैराग्य केवल खान पान और साधनों से नहीं है, हमारा बेहद का वैराग्य और बुद्धि से वैराग्य है। कुछ हमने छोड़ा नहीं है, हम सबके बीच में हैं, साधन प्रयोग कर रहे हैं, सबके साथ रहते हैं, हंसते हैं, बहलते हैं। क्योंकि जब वैराग्य कहा जाता है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत निराशा उदासी वाला जीवन है। जैसे आपने देखा होगा कई बार साकार बाबा की मुरली के अंदर एक बात आती है, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर को जलाने के लिए विशेष हिंदू रस्म के अनुसार उनको शमशान में जब ले जाते हैं तो जो उनके साथ शमशान पर जाते हैं, तो जब मुर्दे को जलाया जाता है तो उनको बहुत वैराग्य आता है, और इतना वैराग्य आता है कि ऐसा ही बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतना नाम कमाया, इतने बड़े बड़े घर बनाए, इतना शान शौक से रहा, इतना अभिमान में जिया, और ऐसी गति आज लकड़ी के बीच में जल रहा है, तो बहुत वैराग्य आता है अंदर से देख करके। लेकिन थोड़े समय का वो वैराग्य होता है, शमशान में जब तक है तब तक वैराग्य है कि ऐसा ही हमारा भी हाल होगा, ऐसे ही हम चले जाएंगे, थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है। और जब बाहर निकल के जाता है, मार्केट देखता है, सब्जियां देखता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉल देखता है, दुकान देखता है सजे हुए, तो उसका वैराग्य शमशान तक रह जाता है, वहीं की वहीं रही, फिर वही खाना पीना खरीदना, और भूल जाता है कि ऐसी गति होगी। तो बाबा कहता है ये वैराग्य तो बहुत क्षणिक है। सन्यासियों को भी वैराग्य जब आता है, सुना होगा जितने भी हमारे बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, उनको जब वैराग्य आया अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, या कोई बहुत बड़ी घटना घटी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके जीवन में आई, तो उन्होंने अपने घर को छोड़ा, जंगल चले गए। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी बाबा कहते हैं कि उनको अगर घर याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, परिवार याद आ रहा है, तो वैराग्य नहीं है। हम सबको बाबा ऐसा वैरागी नहीं बनाता। बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम्हारा तो बेहद का वैराग्य है, क्योंकि तुमको पता है ये कलयुग अभी जाने वाला है, ये बिल्कुल अंतिम श्वास ले रहा है। और जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, एकदम अंतिम श्वास पर वेंटिलेटर पर आ जाता है, तो सब उम्मीदें छूट जाती हैं, कोई आसक्ति नहीं रहती, और मरने वाले को यही कहा जाता है, अब तो तुम राम कहो राम कहो राम कहो, चीजों को याद नहीं करो, क्योंकि अंतिम श्वास में अगर कोई चीज याद आएगी तो क्या होगा। एक स्लोगन बाबा का है कि अगर अंत समय में कोई ऐसा सुमिरन करते हैं, कोई पत्नी का सुमिरन करता है, तो वो वैसे आयोनी में चला जाता है, कोई धन की लोभ लालच की स्मृति में शरीर छोड़ता है, तो सांप योनि में चला जाता है। ये तो कहावत शास्त्रों के अंदर आई है, लेकिन बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे तुम्हारा जब ये अंतिम शरीर जब छूटे, तो कोई भी याद ना आए, एक बाबा दूसरा न कोई। अब इसके लिए हम सबको सब कुछ करें, सेवाएं हम खूब करें, सब साधन यूज करें, सेवाएं करें, संबंध निभाएं, सबके बीच में रहें, लेकिन वृत्तियां उपराम रहें। तो वैराग्य किस चीज से चाहिए? देह की बातों से वैराग्य, देह भान से वैराग्य। जिस देह के प्रति हमारा बहुत इंटरेस्ट है, जिस देह में हमारी बुद्धि अटकी हुई है, जब मिलते हैं तो देह पर हमारा रूप रंग पर नजर जाती है, हमारी वृत्तियों में दैहिक संकल्प चलने लगते हैं, तो दैहिक दृष्टि का, दैहिक वृत्ति का, देहभान की कृति का वैराग्य। और इसके लिए बहुत उपराम वृत्ति चाहिए, उपराम। सबके बीच में हम हैं, लेकिन जैसे न्यारे और प्यारे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हम सब की बुद्धि में बाबा ने पक्का किया है, बच्चे तुम इस दुनिया में मेहमान हो, आज पार्ट प्ले कर रहे हो, कल यहां से जाना है। आप सबको पता हो, जब हम लोग समर्पित हुए, बहुत छोटी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में मैं मधुबन में आया, मेरे परिवार के सभी पिताजी चाचाजी माताजी सभी इसी ज्ञान में थे, और बहुत संपूर्ण निश्चय था, बाबा ने पक्का कराया था कि अब दुनिया गई की गई, चल रही है 40-42 साल हो गए, लेकिन उस समय हम सब की बुद्धि में था बस विनाश होने वाला है, आज ही बस हो जाएगा, ऐसा बाबा ने पक्का किया था। जैसे दादियों को कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, पक्का कर दिया, तो उनको ये नहीं आता अगली दिवाली आएगी या नहीं आएगी, पक्का है अगली दिवाली नहीं आएगी, जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। तो यही हम लोगों का उस समय का अनुभव था, बच्चे थे, छोटे थे, क्या करना है, सब कुछ ये तो सब खत्म होने वाला है, घर से वैराग्य हो गया, संसार से वैराग्य हो गया, कोई चीज नहीं चाहिए, बस बाबा की सेवा कर लो, जब तक हैं, जितना समय है श्वास कर लो, बस बाबा के घर में सेवाएं, और हम समर्पित हो गए। आज अगर उस समय हमने सोचा होता, अभी तो दुनिया और 50 साल चलने वाली है, विनाश तो होने वाला ही नहीं है, अगर बाबा ने बात नहीं कही होती तो पता नहीं मैं कहां पड़ा होता, नरक के अंदर क्या हमारी जीवन होती। तो इस बात से जो वैराग्य था हमारी जीवन बना दी बाबा ने। तो अभी भी बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे बस अचानक बहुत कुछ हो जाएगा, विनाश हुआ कि हुआ। हम जानते हैं जब तक राजधानी नहीं बनी है तब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा। ये भी बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है कि राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग की दुनिया की स्थापना की फुल तैयारियां, जब तक वो तैयार नहीं है, जब तक आत्मा संपन्न और संपूर्ण नहीं बनी है, जब तक हमने अपनी कर्मातीत स्टेज नहीं प्राप्त की है, तब तक ये दुनिया जाएगी नहीं। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, बच्चे कुछ भी हो सकता है अचानक, एवर रेडी रहो, वृत्तियों में रहे, सब खत्म होने वाला, कहीं भी बुद्धि अटक न जाए, लटक न जाए। किसमें न लटके, पहले है देह में लटकी हुई हमारी बुद्धि। हम सब जानते हैं 84 जन्म ही देह के साथ रहे हैं, भले 21 जन्म देही मानी स्टेज थी, लेकिन उसके बाद फुल बॉडी कॉन्शियस हो गए और इतना देह भान पक्का हो गया है, जो मेरा अगर कोई नाम भी लेता है तो फट से ध्यान चला जाता है। इतना देह के प्रति आकर्षण हो गई है, खिंचाव हो गया है, और कोई किसी भी हालत में हो फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता, उसका बहुत इससे लगाव हो गया है। किसी भी चीज से लगाव ही दुख का कारण है, और जब वैराग्य आता है तो सबसे पहले इस देह से आत्मा का लगाव छूटने लगता है। देहभान में वो आत्मा फंसती नहीं है। इसके लिए पहला अभ्यास जो बाबा ने किया, स्वराज्य अधिकारी स्टेज का, आप सबने सुना होगा बाबा की जीवन कहानी के अंदर कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन के अंदर, मुझे याद है बाबा की एक डायरी 1932 की, 32 की, शिव बाबा की प्रवेशता 36 में हुई है, लेकिन उसके 4 साल पहले जब बाबा के 12 गुरु थे, बाबा ने मन बुद्धि और कर्म इंद्रियों से बातें की हैं। आत्मा का ज्ञान इतना नहीं था, लेकिन गुरुओं के कहने के आधार से उन्होंने एक एक कर्म इंद्रिय से वार्तालाप की है, डायलॉग किया है, पूछा है, मन तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तू मेरा मंत्री है, तू मेरा वजीर है, तू मेरे कहना नहीं मानता है, गुरु का ध्यान कहने नहीं देता, आंख तुम मुझे क्यों धोखा देती है, तुम मेरी है, तुम धोखा क्यों देती है, क्यों इधर उधर जाती है, क्यों किसी की देह में जाती है, क्यों किसी के पैसे में जाती है। तो बाबा उस समय इस देह और कर्मेंद्रियों के राजा बन गए, तब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। हम सबको भी ये बात बार बार पक्का कराते हैं, सुना होगा बाबा की कई मुरलियां ऐसी, बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ये 5 प्रकार के इंटरेस्ट जो हैं, वो वैराग्य वृत्ति को तोड़ने वाले हैं। पहला इंटरेस्ट है जो कुछ देखते हैं उस पर बुद्धि चल जाती है, देखने का इंटरेस्ट, आंखों का काम है देखना, लेकिन हम देखते क्या हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे तुम देखते हुए भी नहीं देखो, देखो लेकिन देखते भी नहीं देखो। तो ये एक अभ्यास है कि आंखों का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है हर चीज देखने की, वो इंटरेस्ट समाप्त हो जाए। इसके लिए पहले स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा, मैं आत्मा मालिक हूं, इन आंखों से जो देखना वही देखूं। पहले देखने के लिए बाबा ने कहा किसको देखो, आत्मा को देखो, प्रकृति में आत्मा को देखो, ये शरीर सांप है, इस शरीर को नहीं देखो। अगर अपने विचारों को पवित्र और शुद्ध बनाना है तो ये प्रैक्टिस खूब करो कि मैं आत्मा मालिक हूं और मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रही हूं, शरीर को नहीं देखना। जब शरीर को नहीं देखेंगे तो आत्मिक स्थिति बन जाएगी और कोई भी विकारी संकल्प परेशान नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। दूसरा इंटरेस्ट कानों का है, सुनने का इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति कोई की बातें सुनाने लगता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, पर चिंतन जिसको बाबा कहता है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और कई आत्माओं को कानों से कोई बात सुनाई दे, उसका सुनने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जो वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं, वो केवल एक बाबा की बातें सुनती हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, बाबा कहता बच्चे तुम सुनते हुए भी नहीं सुनो, तुम्हारा कोई इनसे मतलब नहीं है, कोई काम की बातें ही नहीं है। तो जब ये इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है ना, तो वैराग्य आ जाता है, नहीं सुनना मुझे, इन व्यर्थ बातों को नहीं सुनना। जैसे बाबा ने कहा था, तीन स्लोगन पहले हमारे देश में प्रचलित थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हमारे महात्मा गांधी जी के तीन स्लोगन थे, बंदर के चित्र को बना करके, एक के मुख पर ऐसे उंगली थी, एक दोनों उंगली आंखों पर थी और दोनों उंगली ऐसे कान में थी, है ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, और एडिशन करो इसके अंदर, थिंक नो इविल, इविल सोचो ही नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो सोचना बीज है। अगर हम इविल सोच रहे हैं तो मुख से वही निकलेगा जो सोचेंगे, आंखों से वही देखेंगे। इसलिए सबसे पहला अभ्यास हम सब कर रहे हैं कि हम आंखों से कोई भी इविल चीज, माना देह भान वाली चीज नहीं देखेंगे। कोई भी दैहिक बातें सुनाएगा, इधर उधर की बातें सुनाएगा, किसी का परचिंतन सुनाएगा, तो बाबा कहता बच्चे हियर नो इविल, नहीं सुनना, क्योंकि ये पतन की जड़ है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी को अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना है, हियर नो इविल, कोई भी इविल बात कान में न जाए, नहीं तो परेशान करती रहेगी अंदर अंदर। अगर अपनी उन्नति करनी है तो स्व चिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। तो कोई भी परचिंतन की बातों से वैराग्य। फिर ऐसा कोई बोल नहीं बोलना, मुख के इंटरेस्ट कितने हैं बोलने के, सुनने वाले को अलग इंटरेस्ट है लेकिन बोलने वाले को रस कितना है, जो आता मुख से बोलता रहता, बोल पर कंट्रोल ही नहीं जैसे। तो बाबा कहता बच्चे वही बोल बोलो जो दूसरे आत्माओं की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिसमें दूसरों का कुछ भला समाया हुआ है। इसलिए बाबा ने हम सबको स्लोगन दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो बहुत जरूरी है वही बोलो, बाकी कुछ नहीं बोलो। तो ये हमारे बोल के लिए बाबा ने हमको पाठ पक्का करा, इसलिए बोलने का भी इंटरेस्ट समाप्त हो गया। जो जरूरी है वही बोलना है बस, बाकी मन का और मुख का मौन ले लेना है। चौथा इंटरेस्ट है, बहुत चीजों की गंध आकर्षित करती, स्पर्श रस भी है, एक स्पर्श रस है और एक कोई चीजों में बहुत खिंचाव है। जैसे यहाँ की सुगंध बड़ी अच्छी है, यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है, हर चीज व्यक्ति को आकर्षित करती है। कोई को प्रकृति आकर्षित करती है, कोई को व्यक्ति आकर्षित करता है, कोई को कोई वस्तु आकर्षित करती है, तो ये भी एक आकर्षण रूप की, रंग की व्यक्तियों को अपनी तरफ खींचती है। वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं को वो भी देखते हुए भी नहीं देखता है, वो आकर्षण भी उसको आकर्षित नहीं करती। ठीक है, सब अच्छा है, अच्छा है तो सब अच्छा है, कोई चीज विशेष अच्छा लगता है, माना वो मुझे अपनी ओर प्रभावित करता है। इसको बाबा कहता है ये भी इसका इस चीज से लगाव हो गया। और जब कोई लगाव होता है तो आपने देखा होगा, कोई चीज अगर लग जाती है, मानो आप कोई चीज पका रहे हैं भोजन में, और पकाते पकाते आपकी आग तेज है और वो तलने में कढ़ाई में लग गई, चिपक गई, तो क्या होता है, उसकी बदबू आती है, फैलने लगती, खाने जैसा नहीं रहता। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं जहां भी कोई चीज में लगाव है, लगाव माना ये मुझे अच्छा लगता है, आत्मा अगर किसी भी लगाव में आकर्षित हो गई, प्रभावित हो गई, माना उसके वाइब्रेशन नेगेटिव बनेंगे ही, उसकी बदबू चारों तरफ फैलेगी। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे न देह में लगाओ, न देह के संबंधों में लगाओ, न पदार्थों में लगाओ, न अपने संस्कारों में लगाओ। कईयों का लगाव किससे होता है, मेरा नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, उसमें भी लगाव हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है। तो बाबा ने हम सबको नेचर से, स्वभाव संस्कार से, देह से, संबंधों से, पदार्थों से, इन सब से, सबके बीच में रहना है, छोड़ना कुछ नहीं। मंजिल यही है हम सबके लिए कि छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन फंसना कहीं नहीं है। अगर कहीं भी कोई फंस गया माना गया। इसलिए बाबा ने हम सबको वैराग्य वृत्ति में रखा है कि सब कर्म करते हुए, सेवाएं करते हुए, पाठ बजाते हुए एक ही पाठ पक्का करो, मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूं। न्यारा बनना है देहमान से और प्यारा बनना है परिवार में सबसे। जितना जो आत्मा इस देह अभिमान से न्यारी बनती है, उपराम हो जाती है। तो उपराम वृत्तियां, चार वृत्तियां मैं आपको बता रहा हूं। एक उपराम वृत्ति है जो हम सबके बीच में रहते ऊपर वाले को याद रखते हैं। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में फंसते नहीं है, वो उपराम वृत्ति है। कहते यहां है लेकिन यहां नहीं है। बाबा की एक उपराम वृत्ति मैं आपको सुनाता हूं। साकार में ब्रह्मा बाबा सबके बीच में रहते हुए भी धीरे धीरे जब संपन्न बने, संपूर्ण बने, एक साल बाबा ने बिल्कुल सब बातों से अपने आप को डिटैच किया। एक साल तक पहले बाबा बच्चों के बहुत लंबे लंबे पत्र आते थे, पढ़ते थे, बच्चों के साथ पिकनिक करते थे, पहाड़ों पर जाते थे, खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बच्चे आते थे तो उनको बहुत प्यार से गोदी में लेकर के बात करते थे, बहुत जैसे एक लौकिक पिता बच्चों की पालना करता है। लेकिन जिस दिन से बाबा को आ गया कि मुझे तो अभी संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, सब किनारे छोड़ दिए बाबा ने। समाचार भी 60 में, 5 मिनट 2 मिनट में सुना और उसका उत्तर दिया बस। अगर कोई रिपीट करने भी आ गया, मान लो कोई ने पत्र लिखा, पत्र बाबा ने पढ़ लिया, लेकिन फिर कोई आकर के सामने फिर वही बात सुनाने लगता था बाबा को, तो बाबा कहता था, बच्चे तुमने लिखा था ना, बाबा को पता है, फिर क्यों रिपीट कर रहे हो। माना वो इंटरेस्ट समाप्त हो गया। अधिक सुनने का, अधिक बोलने का, अधिक वाचा में, बाहिमुक्ता में आने का इंटरेस्ट समाप्त हो गया। मुझे कर्मातीत बनना, इसलिए सबके बीच में रहते हुए सूखा नहीं बना, उदास नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, परिवार नहीं छोड़ा, कर्म भी नहीं छोड़ा, लास्ट तक भी कर्म छोड़ा नहीं। सुना होगा बाबा ने 18 जनवरी के दिन सभी पत्रों का उत्तर दिया, जितने बाबा के पास पत्र आए थे। फिर दादी जी का हाथ लेकर के पकड़ करके पूरी बिल्डिंग्स, मकान जहां बन रहे थे, जहां काम चल रहे थे, सब दिखाया। और लास्ट में जब शरीर छोड़ना का समय आया, उसके पहले सब बच्चों को बुलाया और बुला करके मुरली सुनाई, पूरा क्लास कराया, और मुरली सुनाने के बाद फिर बच्चों से विदाई ली। माना सेवाएं नहीं छोड़ी, किसी में भी अटका नहीं, किसी में भी लटका नहीं। कितने भी बच्चे प्रिय थे, कोई भी बच्चे बाबा 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 के बिना रह नहीं सकते थे, बाबा ने सब के बीच में रह करके अपने को न्यारा प्यारा बना लिया। ये उपराम वृत्ति बाबा की थी, और उपराम वृत्ति होने के कारण अनासक्त बन गया। कोई भी चीज में, खाने में, पीने में, बात करने में कोई भी आसक्ति नहीं, अनासक्त डिटैच हो गया। खाना है, शरीर को चलाने के लिए भोजन किया, ऐसा नहीं भोजन छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, लेकिन जितना जरूरी है, मुझे यही चीज खानी है, मुझे यही अच्छी लगती है, उसका त्याग कर दिया। जो मिल गया सामने आया, बाबा को भोग लगाया, खा लिया, ऐसे नहीं, यही खाना है। तो इंटरेस्ट जो खाने पीने में था वो भी खत्म हो गया। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा बाबा ने अनासक्त वृत्ति, संग्रह कोई चीज का भी नहीं किया, संग्रह वृत्ति बाबा की नहीं थी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल निर्लिप्त स्थिति थी, वृत्तियां भी निर्लिप्त थी, संग्रह कोई चीज का नहीं किया। अगर कोई चीज दे के गया बाबा को तो बाबा ने उसको ले लिया, स्वीकार कर लिया और उसी समय बच्चों को सेवा में दे दिया। तन को समझा ये बाबा की अमानत है, मेरा नहीं है, वैराग्य वृत्ति की निशानियां सुना रहा हूं। ब्रह्मा बाबा ने तन को अपना नहीं समझा, ये ब्रह्मा बाबा ने दे दिया किराए पर बच्चे शिव बाबा को, इसलिए इसमें मोह नहीं रखा, संभाला, क्योंकि अमानत है, बाबा की अमानत है। तो तन में भी मोह नहीं रखा, धन तो पहले ही दे दिया, कभी अपने लिए यूज नहीं किया। सुना होगा बाबा ने कभी भी समर्पित होने के बाद ओम मंडली जब बनी, शुरू में 1937 में ओम मंडली की स्थापना हुई, 36 में शिव बाबा आए और 1937 में स्थापना हुई, तो ओम मंडली को ट्रस्ट बना करके बाबा ने अपनी सारी संपत्ति माताओं कन्याओं को समर्पित की, यही दिवाली के दिनों में। इसलिए दिवाली यज्ञ में बहुत बड़ा स्थान रखती है, दिवाली के ही दिन थे और दादियों को, 5-7 दादियों को ये निमित्त बना करके बाबा ने समर्पित किया। और उसके बाद बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया, जरा भी कभी नहीं पूछा कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, देखा भी नहीं, अपने प्रति कुछ भी यूज नहीं किया। और अगर कोई साधन थे, साधन सब थे, ऐसे नहीं है ही नहीं तो वैराग्य है, सब साधन थे पाकिस्तान के अंदर, बाबा के पास सब साधन उपलब्ध थे। और उस समय के अखबारों में निकला था रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी, माना कोई साधन की कमी नहीं थी, स्थूल साधन भी सब थे, लेकिन इतना उपराम बाबा था, सबको उपराम बना दिया कि किसी चीज की कोई में आसक्ति नहीं, अनासक्त। तब तो इतना पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जब आना हुआ, कोई चीज में लगाव नहीं, जो चीज ला सके ले आए, लेकिन किसी चीज में किसी को फंसने नहीं दिया, न फंसा न फंसने दिया, बिल्कुल न्यारा प्यारा, बिल्कुल अनासक्त, बिल्कुल डिटैच, कोई संग्रह नहीं करने दिया, ना अपने पास संग्रह रखा और ना दूसरों को कहा संग्रह करो, चीजें इकट्ठा करो, जो था जितना था उसमें संतुष्ट रहो। तो बाबा ने करके दिखाया हम सबको। हम सब जब शुरू शुरू में आए तो यज्ञ बहुत छोटा था, 1972 में ओम शांति भवन भी नहीं था, ये सारा विस्तार बाद में हुआ है, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, बहुत छोटा सा पांडव भवन था जब हम आए हैं। और इतना इकोनॉमी थी, कोई भी चीज खर्च करने में फुल इकोनॉमी, कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता है, एक चीज भी, एक पैसा भी, एक पेनी भी व्यर्थ नहीं कर सकते, फुल अटेंशन था। धीरे धीरे परिवार वृद्धि को पाया, लोग आने लगे, विदेश शुरू हुआ, सेवाएं शुरू हुई, विस्तार हो गया, सब साधन आते गए। लेकिन साधन में बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये साधन तुम्हारे लिए नहीं है, व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है, सेवा के लिए सब साधन है। पहले पहले एक बहुत अच्छा बाथरूम और एक कमरा बनाया गया, कहानी सुनाता हूं मैं आपको यज्ञ की। तो सबका प्रश्न उठा कि यज्ञ में, ये तो आश्रम है, इतना अच्छा बाथरूम बनाने की, लग्जरी बाथरूम बनाने की, इतना अच्छा रूम बनाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं, साधारण रूम बनाए जा सकते थे, साधारण जैसे बाबा बाहर जाते थे जंगल में, बाबा का बाथरूम जो था खुला था, चारों तरफ से कनात लगी थी, टेंट लगा था और उसके बीच में बाबा जाता था लोटा लेकर के, कोई साधन तो थे नहीं उस समय। लेकिन जब ये साधन बनाया गया तो सबका प्रश्न उठा कि क्यों, लेकिन आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस समय हमारे पास वीआईपी जाने लगे, प्रेसिडेंट आए, और जब आए तो उनको पहले स्नान कहाँ करना, फ्रेश कहाँ होना, उनके लिए बाथरूम चाहिए अच्छा। अगर ऐसा वैसा होगा तो पहले सिक्योरिटी उनको आने नहीं देगी, टूटा फूटा बाथरूम होगा। तो ऐसे जब वीआईपी जाने लगे तो वीआईपी के कारण, उनके कारण निमित्त मात्र साधन बनाए गए। बाबा ने कहा साधन है, पैसा है, यूज करो, लेकिन व्यक्तिगत मेरा है, ये मेरेपन का भान ही लगाव है, इससे वैराग्य चाहिए। इतना बड़ा मधुबन है, कोई भी मकान पर, कोई भी कमरे पर किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये फलाने का है, मिला है, यूज कर रहे हैं, आज यहां है कल वहां है, कोई की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन निवासी। मधुबन शब्द दो चीजों को सिद्ध करता है, मधुवन, मधु माना मधुरता, बोलने में, चलने में, देखने में मधुरता टपकती है, मधुर शहद जैसा, और वन माना वैराग्य, किसी चीज में भी राग नहीं, लगाव नहीं। आज हमने मोटे मोटे लगाव तो छोड़ दिए, बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, वैसे इसलिए कई बार कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, त्याग दिखाई देता लोगों को, सफेद ड्रेस पहननी पड़ेगी, बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, सवेरे की नींद छोड़नी पड़ेगी, ये सब त्याग दिखाई देता है। लेकिन बाबा क्या कहता है, बच्चे त्याग है, क्या छोड़ा तुमने, छोड़ा तो किचड़े को छोड़ा, गंदगी को छोड़ा। आज अगर वही कलर वाली ड्रेस पहनी जाती है तो 5-7 दिन नहीं धुलाई करो, वही गंदी पहनते रहो, बीमारियां फैल जाएंगी। सफेद ड्रेस है, थोड़ा सा भी कहीं दाग लगता है धोना पड़ता है, दूसरे दिन पहनो तो भी बदबू आएगी, धो डालो, सब स्वच्छ कर दिया बाबा ने हमको। इसलिए जो भी हमारे नियम बनाए गए लोगों के लिए लगता है त्याग किया इन्होंने, और हम कहते हैं त्याग नहीं है, भाग्य। हम बाहर का नहीं खाते हैं, कितना आज बाहर के भोजन में जो बनाने वाले उनके विचारों का प्रभाव, उनकी अस्वच्छता का प्रभाव, कितना गंदा, कितना किस प्रकार का भोजन। बाबा ने हम सबको मुक्त कर दिया, तो हमने त्याग किया क्या? इसलिए बाबा कहता बच्चे त्याग कुछ नहीं है, त्याग है बुराइयों का, विकारों का। तो हम लोगों ने इन सब चीजों को ऐसे छोड़ा है जैसे हमारा कुछ था ही नहीं, लगाव है ही नहीं। है किसी का? आज बहुत अच्छी मार्केट हो सजी हुई भोजन की, जलेबी रखी हो, मिठाइयां रखी हो, वैरायटी, किसी दुकान में चले जाओ तो आपको मुंह में पानी आएगा क्या? आएगा किसी को? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो सब बेकार की चीज है, पता नहीं कैसे लोगों ने बनाई होंगी। इतना बाबा ने अनासक्त बना दिया। कोई चीज मैं समझता हूं मार्केट की कोई भी चीज खाने पीने की ब्राह्मण बच्चों को अपनी ओर नहीं खींचती। खींचती है किसी को? खींचती है? जो हिंदी समझते हो वो तो खींचती है, नहीं खींचती है ना? अनासक्त हो गए, चाहिए ही नहीं मुझे, दो रोटी खाएंगे, बाबा की जो सब्जी जैसी बनेगी खा लेंगे, रोटी खा के खुश हो जाएंगे, नहीं तो ब्रेड ही खा लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, संतुष्ट हैं। तो खाने पीने में भी आसक्ति नहीं रही। तो लोग समझते हैं त्याग है, और बाबा कहता बच्चे त्याग नहीं किया तुमने, लेकिन ये त्याग करना हमारे लिए सहज था। अब बता कौन सा बंधन रह गया, किस में लगाव रह गया? मैंने सेवा की, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फोटो छपना चाहिए, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मुझे सब पहचाने तो कम से कम। ये सोने की जंजीरों में कई ब्राह्मण आत्माएं फंस जाती हैं आकर के। मोटी मोटी लोहे की जंजीरों को ऐसे तोड़ दिया, न संबंधियों को देखा, न परिवार को देखा, न समाज को देखा, न देश को देखा। बाबा ने कहा हमको अच्छा अनुभव हुआ, एक झट से हम मर गए वहां से, वैराग्य था, छोड़ दिया। लेकिन सूक्ष्म सोने की जंजीरों को चेक करना है, कहीं कोई सोने की जंजीर मुझे अपने बंधन में बांध तो नहीं रही है। किसी प्रॉपर्टी को, मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मेरे प्लानिंग बुद्धि है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, मेरी सेवाएं बड़ी अच्छी हैं, ये मेरापन भी सोने की जंजीर है। अब बाबा कहता है अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति है तो बच्चे इस मेरेपन को भी छोड़ो। करण करावनहार बाबा करा रहा है, कभी भी किसी सेवा में मेरी सेवा है, मेरी बुद्धि है, मेरी प्लानिंग है, मैं बहुत अच्छा हूं, बाबा कहता है ये मैंपन मेरापन ये बहुत महीन सूक्ष्म लगाव की जंजीर है। और जो बेहद का वैरागी है वो सब कुछ करते हुए भी क्या करता है, अपनी सेवाओं को बाबा के आगे समर्पित कर देता। बाबा जो आपने कराया बहुत अच्छा, आपने करा लिया, मैंने क्या किया। ब्रह्मा बाबा की मुरलियों में, साकार मुरलियों में अगर आप देखेंगे, बाबा ने कभी नहीं कहा होगा कि मैंने बड़ी अच्छी मुरली चलाई। कोई बाबा की अगर महिमा करे, हमारी दादी जी भी, दादी प्रकाशमणि को शायद आप लोगों ने देखा होगा, कोई महिमा करे दादी बहुत अच्छी सेवा की, दादी कहते थे मैंने क्या किया, मुट्ठा मेरी महिमा क्यों करते हो, मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया? बाबा ने किया। ये बाबा का यज्ञ है, बाबा की सब काम चल रहा है, बाबा की लीला चल रही है, तुम पर्सनल किसी देहधारी की महिमा क्यों कर रहे हो, उसमें फंस जाओगे। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति माना किसी भी देह देहधारी, किसी की विशेषताएं, किसी की महानताएं, कोई भी अपनी तरफ मुझे प्रभावित न करे, कोई भी अपनी तरफ न खींचे, तब कहेंगे बेहद का वैरागी है, कोई इंटरेस्ट इसका नहीं है। जब महिमा का, मान का, सम्मान का, वस्तुओं का, सबका अंदर से त्याग होगा, मुझे सीट मिले, मुझे कम से कम सीट पर बिठाया जाए, मुझे कोई पूछ ले, मेरा कुछ नाम आ जाए क्लास के बीच में, कम से कम दादी मेरा नाम तो ले, कई बार ये सूक्ष्म में रहता है। और ये भी वास्तव में लगाव है, इस मेरेपन को भी मारना है, तब कहेंगे लगाव मुक्त आत्माएं। तो लगाव सूक्ष्म समाप्त हो जाए, न तन से लगाओ, न मन से लगाओ, न बुद्धि से लगाओ, न धन से लगाओ, ये सब कुछ बाबा जो कुछ दिया है बाबा ने किसका है। हमको तो बड़ी अच्छी लगती बातें, जब मैं विदेश में गया, लंदन में गया, अमेरिका में गया, तो बाबा के बच्चों को मैंने देखा, उनकी भाषा सुनी, ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का भवन है, ये बाबा का है, ये बाबा का, हर बात में उन्होंने बाबा बीच में डाला हुआ है, दादी ने पक्का कराया इनको, माना सब कुछ बाबा का है। हम कहते तो बाबा का कह रहे माना सेंटर है क्या, नहीं नहीं घर है, प्रवृत्ति वालों का घर है, लेकिन कभी भी उन्होंने उसमें ये नहीं कहा मेरा घर है। तो वैराग्य वृत्ति माना जहां पर मैं और मेरा संपूर्ण समाप्त हो जाए, किसी में भी बुद्धि अटकी और लटकी न हो, संसार में है, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्तापन के भान से मुक्त हैं। कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है, अपनी सतयुग की दुनिया की किसी भी बच्चे को निमित्त बना के स्थापना करा रहा है, कोई इसको भी करा सकता। बाबा कहता है कि अगर कोई बिल्कुल बुद्धू बच्चा भी हो ना, जिसके पास बुद्धि न हो, और उसके सामने अगर कोई बड़ा वीआईपी आ जाए, उसको समझ नहीं उसको क्या समझाना है, ऐसे समय पर मैं बच्चे में जाके प्रवेश कर जाता हूं और मैं अपना काम कर लेता हूं, उसकी सेवा कर देता हूं। कई बच्चों को अहंकार आ जाता है कि मैंने बहुत अच्छा समझाया, अगर मैं नहीं समझाता तो ये स्टूडेंट नहीं बनता। और बाबा कहता बच्चे ये तेरी भूल है, तेरे स्टूडेंट कहां से आए, तो मैंने सेवा किया। तो कभी भी ये ना आए कि मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी समझानी अच्छी है, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मैंने ये किया है, ये मैं में भी लगाव हो जाएगा। और मैं मेरे में लगाव हो गया तो दुख और धोखे का अनुभव होगा। जहां दुख और धोखे का अनुभव हो रहा है वहां वैराग्य वृत्ति नहीं है। वैराग्य तभी आता है जब बहुत दुख और धोखा कहीं मिलने लगता है, तो वैराग्य आ जाता है। तो अभी संसार को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना सभी संसार की गति क्या है, बहुत कुछ अचानक संसार में घट रहे हैं घटनाएं। इसलिए बाबा कहता है कहीं पर भी ये नहीं सोचना ये मेरा है, आज है कल जाने वाला है। अपनी बुद्धि को अपनी स्थिति को बड़ा अच्छे से अच्छा बनाना है। इसलिए मधुबन में चांस मिलता है, आप मधुबन में आए हो, अपनी अच्छी स्थिति बनाओ। मैं और मेरा बाबा, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, और इसके अलावा और कोई नहीं मुझे चाहिए। जब इतना वृत्तियों में एक बाबा दूसरा न कोई पक्का हो जाएगा तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा संसार से। ये सेवाएं खूब करनी है, सेवाओं से वैराग्य नहीं है, लेकिन सेवा में जो मैं और मेरापन है उससे वैराग्य। तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। ओके, तो ऐसी वैराग्य वृत्ति को धारण करके अपने सूक्ष्म संस्कारों पर नजर डालो। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक स्वयं को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी विकार आपको सताता है उसको छोड़ा तभी जा सकता है, उससे मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब बिल्कुल उससे नफरत आ जाए कि ये बिल्कुल दुख देने वाला है, ये तो मुझे गिराने वाला है, ये तो मेरे नाम को बदनाम करने वाला है। वैराग्य आ जाएगा आपको। जब इतना अंदर से वैराग्य आएगा तो खुद में परिवर्तन आएगा, और खुद में परिवर्तन आएगा तो संसार में परिवर्तन आएगा, और संसार बदलेगा तो समाज अपने आप बदल जाए, प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको यही स्लोगन देते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन के लिए बच्चे बेहद का वैराग्य, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, इन विकारों से वैराग्य, बुराइयों से वैराग्य, ये सब दुख देने वाली है। जब इतना अंदर से वैराग्य आएगा तो परिवर्तन दिखाई देगा और एकदम आत्मा स्वच्छ पावन बनेगी और एक सेकंड में बाबा के पास उड़ के जाएगी। और अगर कहीं भी रस्सी लगी हुई होगी तो क्या होगा, योग लगाने बैठो बुद्धि की रस्सी कहीं जुड़ी हुई हो तो कितनी मेहनत लगती, योग लगता ही नहीं। ऐसे बाबा के घर में जाने के लिए अगर कोई बुद्धि में फंसा हुआ कहीं भी, तो फिर बाबा कहता बच्चे जन्म भी ऐसा मिलेगा और सजाएं भी मिलेंगी। इसलिए हम सबको पहले से तैयारी करनी है, वैराग्य वृत्ति में रहकर किसी भी बंधन को चेक करो और बुद्धि से उसको काट दो। मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ओके, ओम शांति। अभी हमारी दादी जी आने वाली हैं, इसलिए मैंने क्लास को स्टॉप किया। ओके।